और मित्रों, जैसे कि आप जानते हो, मैं इस सप्ताह आपसे चुनाव की विशेषता के विषय में बात कर रहा था और कैसे जो हर एक निर्णय हम लेते हैं वह हमारे जीवन के परिणाम को निर्धारित करती है। और मैं चॉइस शब्द के लेटर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि मैं उसका विवरण आपको दे सकूं। हमने इसकी शुरुआत की थी कि कैसे हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उसे चुनना है, और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव वही है और उसकी शुरुआत वहीं से होती है और उसी यही हमें सक्षम करता है कि हम सही निर्णय ले पाए उसके बाद से, क्योंकि प्रभु हमारी सहायता करते हैं। तब हमने देखा कि नम्रता के मार्ग के चुनाव करने की विशेषता को, और कल के दिन हमने देखा आज्ञाकारिता के मार्ग को चुनने के विषय में। और जो अगला लेटर है चॉइस में वो है आई, और आज मैं इंटीग्रिटी अर्थात ईमानदारी के विषय में बात करना चाहूंगा। और यह शब्द आपके लिए नया हो सकता है, परंतु आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसका अर्थ होता है ईमानदारी हृदय में। जब लोग ईमानदारी के विषय में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि झूठ ना बोलना। हाँ, यह महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं इसके विषय में पहले बातचीत करना चाहूंगा। और सत्य बोलना और हर एक परिस्थिति में सच्चाई के लिए खड़ा रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। झूठ बोलना बहुत गंभीर है, यहां तक कि यीशु ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय में उसके 44 वचन में, जो झूठ का पिता है वह शैतान है। इसलिए जब आप एक झूठ बोलते हैं तो आप शैतान के साथ हाथ मिलाते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो झूठ का पिता है। इसलिए जब आप झूठ बोलते हैं तो आप शैतान के साथ हाथ मिलाते हैं, और शैतान की मातृभाषा तो झूठ है। जैसे भारत में हम में से अलग लोगों की अलग अलग मातृभाषा होती है, वैसे ही शैतान की मातृभाषा झूठ है, झूठ बोलना, और ये बहुत ही गंभीर है। और मैं बहुत ही निश्चय है मुझे कि हम सब ने झूठ बोला होगा, क्योंकि यदि आप एक झूठ बोलते हैं तो आपको दूसरा और फिर उसके बाद उसे छुपाने के लिए और कई झूठ बोलना पड़ जाता है। और आज आप निर्णय लें मेरे मित्रों कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और आपके साथ भला ही होगा, परंतु जो ईमानदारी है वो इससे कहीं बढ़कर है। बहुत सारे लोग जब वे झूठ बोलते हैं वे केवल इस बात की चिंता करते हैं कि वे पकड़े ना जाए, परंतु ईमानदारी जो है वह है हृदय में ईमानदारी होना, अर्थात यह कि मैं अपने हृदय में भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 15 के 18 में कहा कि जो बातें दिल से अर्थात हृदय से मनुष्य के बाहर निकलती हैं, और वैसे ही जैसे मत्ती 7 में उसने कहा कि यदि एक पेड़ में गंदा फल लगा है, वैसे ही जो चीजें हमारे हृदय से चीजें निकलती हैं वो निर्धारित करती कि हमारा पेड़ कैसा होगा। उदाहरण स्वरूप यदि आपके पास मैंगो ट्री है, आम का ट्री है, और जैसे आम भारत देश में मिलते हैं वैसे कहीं और नहीं मिलते हैं, और आम मेरा फेवरेट फल है, और कल्पना करें आपके घर में एक आम का पेड़ है और उसमें से लगातार खराब आम उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आप इस बात की चिंता करेंगे कि लोग क्या सोचेंगे आपके पेड़ के विषय में और कहेंगे कि अरे इसके पेड़ में कैसे गंदे फल लग रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, लोगों के उठने के पहले बड़े सुबेरे तो आप करेंगे सबसे खराब खराब जो आम है उसे तोड़ लेंगे और बाजार जाकर के अच्छे आम लेके आएंगे और उसे फिर से पेड़ में टांग देंगे। और जो भी व्यक्ति आपके घर के बाजू से गुजरेगा वो देख के कहेगा कि कितने अच्छे आम के फल लगे हैं इसमें, यह तो बेईमानी है, जबकि पेड़ ही स्वयं गंदा है, इसीलिए तो उससे गंदे फल आ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो कि आप उस पेड़ में अच्छे आम टांग रहे हो, और आप तब क्या करोगे जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह ही देखने को आ गया, या जिस दिन आप दुकान गए वहां पे आपको आम ही नहीं मिला सुबह के समय, तब तो फिर आप पकड़ा ही जाओगे। और गिनती 32 के 23 में एक वचन पाया जाता है, और आप इस बात का निश्चय जान रखें कि तुम्हारा पाप तुमको पकड़ लेगा। और इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सोचा कि वे अपने झूठ बोलने की आदत को या अपने पाप को छुपा पाएंगे, आगे चल करके उनका पाप उजागर हो जाता है, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके दिल में ईमानदारी नहीं थी। और ये बहुत ही स्ट्रेसफुल जीवन होगा यदि आपको हमेशा इस पेड़ से खराब फलों को उतारना और उसमें अच्छे फल टांगना। और खुशकिस्मती से एक बेहतर मार्ग है। मैं आपको इंटीग्रिटी अर्थात ईमानदारी का एक अच्छा परिभाषा दूंगा, सरल सा, और उसका अर्थ यह है कि वह तब होना जब आपको कोई नहीं दे रहा है। ईमानदारी का अर्थ यह है कि आप तब क्या होते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है। और उदाहरण स्वरूप, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एक एम्प्लॉय को खोज रही है जो उनके एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में आए, और बहुत सारे रेज्यूमे जो उन्होंने रिसीव किए उसको देखने के बाद तो उन्होंने उसमें से 25 एप्लीकेंट्स को चुना और उनको वे एक कमरे में लेकर के जाते हैं और उन्हें क्वेश्चन पेपर देते हैं जिसमें 10 इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, और जो उनका इंटरव्यूअर होता है वो उनसे कहता है कि तुमको 30 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे और 30 मिनट के बाद वो वापस आएगा। और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है, हर कोई उस कमरे में अपने स्मार्टफोन निकाल लेता है और आंसर खोजने लगता है, और वे लोग बड़े ही जल्दी से अपने आंसर खोज लेते हैं और 20 मिनट में ही अपना पेपर खत्म कर देते हैं। परंतु एक जवान लड़की जो रहती है उसने नकल करने से इनकार किया, यद्यपि वहां पे कोई नहीं देख रहा था, और उसने अपना भरसक प्रयास किया अच्छा अच्छा उत्तर लिखने के लिए, और उसने ऐसा लिखा कि वो 30 मिनट में अपने दो प्रश्न खत्म नहीं कर पाई आखिरी के, और जब इन्विजिलेटर आया तो उसने पेपर सबके कलेक्ट किए और बिना किसी पेपर को देखे बिना उसने कहा, और हमने निर्णय लिया है कि इस कंपनी में वो पद को कौन प्राप्त करेगा, और उन्होंने उस जवान लड़की को सामने बुलाया और उसे बधाई दिया, और बाकी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि अरे तुमने तो हमारे उत्तर को देखा ही नहीं, और तुम बिना उत्तर को देखे कैसे इस व्यक्ति का चयन कर सकते हो। तब उन्होंने दिखाया कि कमरे के पीछे में एक छोटा सा कैमरा लगा है जिसके माध्यम से वो हर चीज को देख रहा था जो कमरे में हो रहा था, यद्यपि वो वहां पे शारीरिक तौर पे उपस्थित नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ईमानदारी सबसे ज्यादा आवश्यक है बजाय ज्ञान के, और प्रोवर्ब्स में नीति वचन के 15 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें जो है वो सब स्थानों में लगी रहती हैं और भले और बुरे दोनों को देखती रहती। आप शायद इस बात को नहीं जानो मेरे मित्रों, परंतु परमेश्वर आपके जीवन को देख रहे, ना केवल उसको जो वो कहते हैं परंतु उसको भी देख रहे जिसे आप सोच रहे हैं। आपके मन के अंदर एक छोटा सा कैमरा है जिसके माध्यम से परमेश्वर आपके विचारों को, आपके आचरण को देख रहा है, आपके मन के अभिप्रायों को देख रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपको कोई नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर ही वह एकमात्र व्यक्ति जो आपके जीवन का इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है, और एक दिन हम में से हर एक को अपने जीवन का हिसाब उसके सामने देना पड़ेगा, और उस दिन वह हमारे छोटे से कैमरा को सबके सामने प्ले करके दिखाएगा। इसलिए हमें उन्हीं चीजों की खोज करना है जिनकी खोज परमेश्वर करता है। और यदि लोग आपके विषय में अच्छा भी सोच रहे परंतु एक दिन उजागर होगा कि आप केवल ढोंग कर रहे थे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके दिल में क्या है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल में ईमानदारी की लालसा करता है, क्योंकि वही तो एक दिन उजागर होगी। प्रतिदिन खराब आम को काट के निकालना और उसकी जगह पे अच्छे आम पेड़ में टांगना बहुत ही थका देने वाला काम है। इसलिए हर दिन दिखावे का जीवन जीना बहुत ही थकाने वाला काम है, और हमेशा डर रहता है कि कहीं लोग मुझे ना देख लें। यीशु मसीह हमें एक अच्छा मार्ग प्रदान करता है, उस मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। मत्ती के सुसमाचार के 3 अध्याय में हम यीशु मसीह की एक सेवकाई के विषय में पढ़ते हैं जो उसकी सेवकाई है एक एक्सपर्ट माली की। वह एक एक्सपर्ट माली है जो आ करके पेड़ को और उसके जड़ को दोनों को काट सकता है। यदि आप देखेंगे कि ऐसा पेड़ है जो झूठ को दिखावे को निरंतर प्रोड्यूस कर रहा है, तो यीशु मसीह एक एक्सपर्ट गार्डनर है, एक एक्सपर्ट माली है जो आकर के सीधा पेड़ों की जड़ पे कुल्हाड़ा मारता है, जिसके माध्यम से आप हमेशा के लिए उस खराब मैंगो ट्री से आप निजात पा सकते हैं, और आपके गार्डन में एक अच्छे पेड़ को लगाता है, एक अच्छे मैंगो के पेड़ को लगाता है, और उसके बाद कभी आपको दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल उसको पोषण देना पड़ेगा, और उसके बाद आप झूठ के बजाय सच बोलने लगेंगे, और आप कभी पैनिक नहीं करेंगे जब आप सुने कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी और आपको यह न लगे कि क्या उन्होंने मेरी बात को सुन लिया क्या। जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे अकेले में, तब आपके दिल में ईमानदारी होगी, इंटीग्रिटी होगी। जीवन बहुत ही आसान हो जाता है जब आपके पास इंटीग्रिटी होती, ईमानदारी होती है, और मैं आशा करता हूं कि आज आप इंटेग्रिटी का चुनाव करोगे और आप यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि यहीं पर से सारी चीजों की शुरुआत होती, वह आपको एक नया जीवन प्रदान करेगा, एक नया पेड़ देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें इंटीग्रिटी के मार्ग का उदाहरण दिखाया है। हमारी सहायता करें कि वो अच्छे बीज हम अपने जीवन में बो सकें, ताकि हम अपने हृदय में ईमानदार बने रह सकें। इन प्रिय विद्यार्थियों को आशीषित करें, इन्हें प्रोत्साहित करें, इनकी सहायता करें कि ये भी इस मार्ग में चलने वाले हो सके। यीशु के नाम में आमीन।